एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही दिमाग में एक ही शब्द आता है, पावर।
नेपोलियन बोनापार्ट।
हाँ, एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनते ही जहन में युद्ध, जबरदस्त महत्वाकांक्षा और एक पूरे महाद्वीप पर छा जाने की तस्वीरें दौड़ने लगती हैं।
बिल्कुल।
और इस सफर में हमारे गाइड हैं ब्रिटिश सैन्य इतिहासकार डेविड गेट्स और उनकी किताब नेपोलियन। ये किताब इस शख्स की जिंदगी को किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं देखती,
नहीं बल्कि एक बहुत ही पैनी नजर से देखती है।
हाँ,
और ये आज भी इतना जरूरी विषय है ना, क्योंकि ये सिर्फ एक सम्राट की कहानी नहीं है, ये तो लीडरशिप, पार के इस्तेमाल और जब एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा हद से बढ़ जाए तो क्या होता है, इसकी एक केस स्टडी है।
सही बात है। गेट्स की किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नेपोलियन था क्या?
हाँ।
क्या वो सिर्फ एक बेजोड़ मिलिट्री जीनियस था जिसका साम्राज्य तलवार के दम पर बना
और उसी से खत्म हो गया,
या फिर वो आधुनिक यूरोप का एक ऐसा आर्किटेक्ट था जिसकी बनाई नींव पर आज भी कई देशों के कानून और एडमिनिस्ट्रेशन टिके हुए हैं?
तो इस सफर पर निकलने से पहले हमारे गाइड यानी लेखक डेविड गेट्स को थोड़ा जान लेते हैं। आखिर वही तो हमें नेपोलियन की दुनिया का रास्ता दिखाने वाले हैं।
हाँ, और ये कोई आम इतिहासकार नहीं है।
नहीं,
डेविड गेट्स को आप नेपोलियन के दौर के युद्धों का स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, लेकिन उनकी असली पहचान है उनकी गहरी रिसर्च।
उनकी एक और किताब बहुत मशहूर है, द स्पैनिश अल्सर।
एग्जैक्टली।
स्पेन में हुए उस युद्ध पर जिसे नेपोलियन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है।
बिल्कुल, और यही बात गेट्स के नजरिए को खास बनाती है। वो नेपोलियन को किसी हीरो या विलन की तरह नहीं देखते, वो उसे एक कमांडर इन चीफ की तरह देखते हैं।
एक प्रैक्टिकल नजर से।
हाँ, वो उसकी सैन्य रणनीति को समझते हैं, लेकिन साथ ही वो उसकी राजनीतिक चालों का भी विश्लेषण करते हैं। वो मिथकों को हटा के हमें असली नेपोलियन से मिलवाते हैं, एक ऐसा इंसान जो मौके का फायदा उठाना जानता था लेकिन अपनी ही बनाई आग में जल गया।
तो फिर गेट्स की ये किताब हमें नेपोलियन के बारे में क्या बताती है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है?
देखिए, गेट्स का सबसे बड़ा तर्क ये है कि नेपोलियन को समझने के लिए हमें उसे फ्रांसीसी क्रांति की पैदाइश के रूप में देखना होगा।
अच्छा।
वो कोई आसमान से नहीं टपका था, वो उस दौर की उथल पुथल का नतीजा था।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब अगर क्रांति न होती तो नेपोलियन शायद कॉर्सिका में ही एक मामूली सैनिक बनकर रह जाता।
शायद। क्रांति ने उसके लिए दरवाजे खोले, सिर्फ दरवाजे नहीं खोले, पूरा मैदान खाली कर दिया।
कैसे?
ज्यादातर बड़े शाही खानदान के आर्मी ऑफिसर या तो मार दिए गए या देश छोड़कर भाग गए। अब सेना में आगे बढ़ने के लिए आपका खानदान नहीं, आपकी काबिलियत देखी जा रही थी।
और नेपोलियन के पास काबिलियत की कोई कमी नहीं थी।
बिल्कुल नहीं। और गेट्स इसी सफर को दिखाते हैं, कॉर्सिका के एक साधारण तोपखाने के ऑफिसर से लेकर यूरोप के सम्राट बनने तक का सफर।
लेकिन गेट्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि नेपोलियन की शक्ति सिर्फ उसकी तलवार में नहीं थी।
हाँ, और यही इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। गेट्स कहते हैं कि नेपोलियन का असली और लंबे समय तक टिकने वाला असर उसके सुधारों में है, जैसे कि नेपोलियनिक कोड।
कानूनी संहिता।
ये सिर्फ कानूनों का एक कलेक्शन नहीं था, ये एक राजक्रांतिकारी विचार था। पहली बार फ्रांस में और बाद में पूरे यूरोप में कानून जन्म या वर्ग पर नहीं बल्कि तर्क और बराबरी पर आधारित था।
सोची, इसने तो सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म की जड़ों पर ही हमला कर दिया होगा।
बिल्कुल, इसने संपत्ति का अधिकार को पवित्र बना दिया, जिससे आधुनिक पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का रास्ता खोला।
मतलब वो एक ही समय में पुराने यूरोप को तबाह भी कर रहा था और नए यूरोप को बना भी रहा था।
एग्जैक्टली। एक डिस्ट्रॉयर और एक क्रिएटर, दोनों एक ही शख्स में। यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है।
तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। उस दौर में तो हजारों युवा ऑफिसर थे, ऐसा क्या खास था इस कोर्सिका के लड़के में कि वो गुमनामी से निकलकर फ्रांस का सम्राट बन गया?
गेट्स इसकी शुरुआत नेपोलियन की पहचान से करते हैं। वो कॉर्सिका से था जिसे फ्रांस ने कुछ ही समय पहले अपने कब्जे में लिया था, तो फ्रेंच आर्मी में उसे हमेशा एक बाहरी की तरह देखा जाता था।
अच्छा, उसके लहजे का भी मजाक उड़ाया जाता था।
हाँ, और शायद इसी वजह से उसमें खुद को साबित करने की एक जबरदस्त आग थी, एक जुनून था।
और फिर क्रांति ने उसे मौका दे दिया। मैंने पढ़ा है कि उसका पहला बड़ा कारनामा 1796-97 का इटालियन अभियान था। गेट्स उसे एक गेम चेंजर क्यों मानते हैं?
पॉइंट पर इकट्ठा करके ऐसा हमला करना कि दुश्मन संभल ही ना पाए।
दिलचस्प है।
और गेट्स बताते हैं कि यहीं पर नेपोलियन ने सीखा कि जंग के मैदान की जीत को राजनीतिक पावर में कैसे बदला जाता है। उसने पेरिस से पूछे बिना खुद ही संधियां की
और अपनी एक हीरो वाली इमेज बनाई।
हाँ, अपने बुलेटिनों के जरिए वो एक तरह से मॉडर्न प्रोपेगेंडा का मास्टर था।
और फिर वो मिस्र गया, वहां से लौट कर सीधा सत्ता पर कब्जा, तो अब वो फ्रांस का शासक बन चुका है। इसके बाद उसने क्या किया?
सत्ता में आते ही उसने सबसे पहले फ्रांस को अंदर से मजबूत करने पर ध्यान दिया। बैंक ऑफ फ्रांस बनाया, एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया, और सबसे जरूरी, नेपोलियन ने कोड लागू किया।
और गेट्स का तर्क ये है कि ये सुधार सिर्फ देश चलाने के लिए नहीं थे।
नहीं, वो कहते हैं कि ये एक ऐसी मजबूत मशीन बनाने के लिए थे जो लगातार युद्ध लड़ सके।
अच्छा।
एक स्थिर अर्थव्यवस्था, एक जैसा कानून, अच्छा प्रशासन, इन सबसे उसे सैनिक, पैसा और संसाधन जुटाने में जबरदस्त आसानी हुई।
और इसी मजबूत नींव पर उसने अपनी सबसे शानदार जीतें हासिल की, जैसे ऑस्ट्रेलिट्स।
हाँ, 1805 में ऑस्ट्रेलिट्स का युद्ध, उसे उसकी सामरिक प्रतिभा का शिखर माना जाता है। यहीं पर उसके उस कॉर्प्स सिस्टम का कमाल दिखा था।
ये कॉर्प्स सिस्टम क्या था?
हर कॉर्प्स एक मिनी आर्मी थी जिसमें अपनी पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना सब होता था। वे अलग अलग रास्तों से तेजी से आगे बढ़ सकती थी और फिर अचानक एक जगह इकट्ठा होकर दुश्मन पर टूट पड़ती थी।
कमाल है, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद तो अक्सर ढलान शुरू हो जाती है। साम्राज्य में दरारें कहां से पड़नी शुरू हुई?
गेट्स यहां दो बड़ी और विनाशकारी गलतियों का जिक्र करते हैं। पहली थी उसकी जिद, जिसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं।
ये ब्रिटेन के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध था, है ना?
हाँ, ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कैंसिल करने की कोशिश। उसने पूरे यूरोप को हुक्म दिया कि कोई भी देश ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करेगा।
लेकिन ये आइडिया बुरी तरह पिट गया।
बिल्कुल, एक तो तस्करी को रोकना नामुमकिन था और दूसरा, इसने पूरे यूरोप के व्यापारियों को नेपोलियन का दुश्मन बना दिया।
और दूसरी बड़ी गलती,
दूसरी और सबसे घातक गलती थी स्पेन पर हमला। गेट्स इसे स्पैनिश अल्सर कहते हैं, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरा,
क्योंकि यहां उसे आम लोगों के गुरिल्ला युद्ध से लड़ना पड़ा।
एग्जैक्टली, उसकी सेना बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए बनी थी, न कि पहाड़ों में छिपकर हमला करने वाले विद्रोहियों से लड़ने के लिए।
और फिर आया 1812 का रूस पर हमला। ये तो उसकी महत्वाकांक्षा का चरम था, 6 लाख सैनिकों की सेना।
और गेट्स इसे एक सैन्य हार से ज्यादा एक लॉजिस्टिकल, मतलब साजो सामान की हार बताते हैं। उसकी विशाल सेना रूस की विशालता और कड़ाके की ठंड के लिए तैयारी नहीं थी।
उसका तरीका था कि सेना जहां जाएगी वहीं से रसद हासिल करेगी।
हाँ, लेकिन रूसी सेना सब कुछ जलाते हुए पीछे हट रही थी, तो मतलब खाने के लिए कुछ नहीं
और रहने के लिए कोई जगह नहीं।
बिल्कुल, और फिर आ गई रूस की भयानक सर्दी।
कहते हैं जनरल विंटर ने रूसी सेना से ज्यादा फ्रांसीसी सैनिकों को मार डाला।
इस एक अभियान ने नेपोलियन के अजेय होने का मिथक तोड़ दिया
हमेशा के लिए।
और फिर कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, उसका पतन। रूस से लौटने के बाद भी उसने हार नहीं मानी।
नहीं, उसने फौरन एक नई सेना खड़ी की, लेकिन अब दो चीजें बदल चुकी थीं। पहली, उसके सबसे अनुभवी सैनिक रूस में मारे जा चुके थे।
और दूसरी?
दूसरी और सबसे बड़ी बात, अब उसके दुश्मन उसकी तकनीक सीख चुके थे, उन्होंने एकजुट होकर लड़ना सीख लिया था।
और फिर हुई लिप्सिग में राष्ट्रों की लड़ाई और अंत में वाटरलू।
हाँ, वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई में उसकी कहानी का अंत हो गया, जहां उसे वेलिंगटन और प्रशिया की संयुक्त सेनाओं ने आखिरी बार हराया।
और आखिर में सेंट हेलेना का सुनसान द्वीप, जहां उसने अपनी यादें लिखवाई और अपनी कहानी को खुद गढ़ा। गेट्स का निष्कर्ष यही है कि नेपोलियन की सैन्य प्रतिभा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी
और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई।
हाँ, क्योंकि उसे हर समस्या का समाधान युद्ध में ही दिखता था।
इस पूरी कहानी से कुछ बड़े संदेश या थीम निकल कर आते हैं। पहला तो यही है कि नेपोलियन की पूरी शक्ति उसकी सैन्य प्रतिभा पर टिकी थी।
सही बात है। गेट्स ये साफ करते हैं कि उसका सम्राट का ताज हर बड़ी जीत के साथ दोबारा गढ़ा जाता था। जब तक वो जीतता रहा वो सम्राट था,
जैसे ही वो हारने लगा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
दूसरा और शायद सबसे जरूरी संदेश है कि महत्वाकांक्षा एक दोधारी तलवार है। उसी एम्बिशन ने उसे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, लेकिन उसी ने उसे रुकने नहीं दिया।
उसे समझ ही नहीं आया कि कब रुकना है।
भारत में भी हम अक्सर कॉर्पोरेट जगत या राजनीति में देखते हैं कि कैसे लोग सफलता के शिखर पर पहुंचकर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं,
क्योंकि उन्हें रुकना नहीं आता।
बिल्कुल सही।
तीसरा थीम है आधुनिक संस्थाओं का निर्माता। ये कमाल का विरोधाभास है। उसके युद्धों ने लाखों जाने ली, लेकिन उसकी बनाए कानूनी व्यवस्थाएं उसके साम्राज्य से ज्यादा समय तक टिकी रहीं।
हाँ, आज भी कई देशों के कानून नेपोलियनिक कोड पर आधारित हैं। ये दिखाता है कि स्थायी प्रभाव हथियारों से नहीं, विचारों और सिस्टम से बढ़ता है।
और आखिरी थीम,
प्रतिभा की सीमाएं। नेपोलियन कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, वो कुछ बड़ी ताकतों को नजरअंदाज करने की वजह से हार गया, जैसे लॉजिस्टिक्स,
समुद्री शक्ति जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थी,
और राष्ट्रवाद की उभरती ताकत जिसे उसने अनजाने में स्पेन और जर्मनी में खुद ही जगा दिया था।
गेट्स की किताब में नेपोलियन के कुछ विचार भी हैं जो उसकी सोच को दिखाते हैं। जैसे एक जगह वो कहता है, मैं घोड़े पर सवार क्रांति हूँ। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
इसका मतलब है कि वो खुद को फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों जैसे बराबरी, काबिलियत का वाहक मानता था, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि इन सिद्धांतों को फैलाते फैलाते वो खुद एक तानाशाह बन गया।
वो क्रांति का बेटा था, लेकिन उसने क्रांति की हत्या भी कर दी।
बिल्कुल।
एक और दिलचस्प विचार है जो शायद उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है। मेरी असली शान मेरी 40 लड़ाइयों में नहीं है, जो हमेशा जीवित रहेगा वो है मेरा सिविल कोड।
ये कमाल है ना? ये दिखाता है कि वो खुद भी समझता था कि उसकी सैन्य जीतें तो वक्त के साथ धुंधली पड़ जाएंगी,
लेकिन उसके बनाए कानून स्थायी होंगे।
हाँ, वो जानता था कि इतिहास उसे एक कानून बनाने वाले के रूप में ज्यादा याद रखेगा।
और एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद थोड़ा डरावना कथन, सत्ता मेरी प्रेमिका है।
ये इसकी सोच का सार है। उसके लिए पावर और कंट्रोल से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने रिश्तों, संधियों, शांति, सबको सत्ता हासिल करने का एक साधन माना। सत्ता ही उसका अंतिम लक्ष्य थी, उसका नशा थी।
इस ऐतिहासिक कहानी से आज के जीवन के लिए भी कुछ जरूरी सबक मिलते हैं। पहला तो लीडरशिप से जुड़ा है। नेपोलियन की कहानी चेतावनी देती है कि सिर्फ एक ताकत पर निर्भर रहना खतरनाक है।
बिल्कुल, इसे हैमर एंड नेल प्रॉब्लम कहते हैं। अगर आपके हाथ में सिर्फ एक हथौड़ा है तो आपको हर चीज खील नजर आएगी।
हाँ, वो एक महान जनरल था, लेकिन उसने हर समस्या को एक जनरल की नजर से ही देखा।
सही बात है। आज के कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए ये एक बड़ा सबक है। हो सकता है कोई एक बहुत अच्छा इंजीनियर हो, लेकिन एक कंपनी चलाने के लिए उसे एक अच्छा मैनेजर, रणनीतिकार और डिप्लोमेट भी होना जरूरी है।
दूसरा सबक है लॉजिस्टिक्स का महत्व। हम अक्सर बड़े बड़े आइडियाज पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के इंतजाम को भूल जाते हैं।
हाँ, रूस में उसकी हार का सबसे बड़ा कारण साजो सामान की कमी थी। ये किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर लागू होता है, चाहे वो बिजनेस हो या घर में एक बड़ी शादी ही क्यों ना हो।
हस्ती है। बिल्कुल, एक शानदार प्लान बेकार है अगर उसे एग्जीक्यूट करने का इंतजाम ना हो।
और एक व्यक्तिगत स्तर पर भी एक गहरा सबक है, ये जानना कि कब रुकना है। नेपोलियन हमेशा और ज्यादा चाहता था।
सफलता को पचाना और उसे स्थिर करना भी उतना ही जरूरी है जितना सफलता हासिल करना।
बिल्कुल, कभी कभी एक और लड़ाई लड़ने के बजाय अपनी जीत को सहेजना ज्यादा बड़ी जीत होती है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि नेपोलियन की प्रतिभा और उसका पतन एक ही सिक्के के दो पहलू थे। उसकी सैन्य मानसिकता ने ही उसे बनाया और उसी ने उसे मिटाया।
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसका प्रभाव कितना विरोधाभासी है। एक तरफ उसने यूरोप में आधुनिक तर्कसंगत कानून फैलाया,
और दूसरी तरफ उसके युद्धों में लाखों लोग मारे गए।
हाँ, वो एक ही समय में एक सुधारक भी था और एक अत्याचारी भी। गेट्स की किताब इस जटिलता को बहुत खूबी से पकड़ती है, बिना कोई आसान सा जवाब दिए।
ये चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ी जा सकती है। इतिहास में क्या ज्यादा शक्तिशाली है, एक व्यक्ति की असाधारण प्रतिभा या वो बड़ी ताकतें जिन्हें वो नजरअंदाज कर देता है?
जैसे भूगोल, लॉजिस्टिक्स और लोगों की सामूहिक इच्छा। नेपोलियन की कहानी शायद यही दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, इन बड़ी ताकतों से ऊपर नहीं हो सकता।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।